जकरिया अध्याय 6। हम देख चुके हैं कि यहोवा ने जकरिया को 10 दर्शन दिखाए। दर्शनों की व्याख्या आवश्यक होती है क्योंकि उनका अर्थ गुप्त होता है, परंतु यदि इसमें जब तक व्याख्या परमेश्वर ना दे तो धर्मशास्त्र की काल्पनिक व्याख्या मूर्खता होती है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी व्याख्या होती है जो विश्वास के योग्य नहीं होती है। लोग कहते हैं, पास्टर साहब इसकी एक व्याख्या तो ये भी है। जी हां, ये एक दुखदायी सत्य है। मेरे विचार में परमेश्वर की ये इच्छा नहीं कि हम बाइबल की व्याख्या करने का प्रयास करें। जो अर्थ आप पढ़कर समझते हैं, मेरे विचार में वही उसका सच्चा अर्थ है। यदि परमेश्वर उपमाओं का प्रयोग कर रहा है और यदि इन उपमाओं का धर्मशास्त्र के अन्य भाग में कोई आधार है, तब तो आप उसके आधार पर व्याख्या कर सकते हैं। परंतु ये अति आवश्यक है कि आपका आधार बदलता ना जाए। आपको ध्यान होगा कि हमने व्याख्यात्मक एक रूपता का उल्लेख किया है। इसका अर्थ है कि प्रतीकों का अर्थ संपूर्ण बाइबल में एक ही है, अलग अलग नहीं है। उदाहरण के लिए पीतल परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है, सोना स्वर्गीय स्थान का प्रतीक है, चांदी उद्धार का प्रतीक है। कहने का अर्थ यह है कि प्रतीकों का अर्थ बदलता नहीं है। रंगों के साथ भी ये सत्य प्रासंगिक होता है। नीला रंग आकाश का प्रतीक है, बैंगनी रंग राजसी होता है, लाल बलिदान का रंग है तथा सफेद रंग शुद्धता का प्रतीक है। इनके अर्थ को हम बदल नहीं सकते हैं। आकाश के पक्षी शैतान और उसके कामों का प्रतीक है। बीज बोने वाले के दृष्टांत में कुछ बीज मार के किनारे पर गिरे और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया, तो उसका अर्थ था कि शैतान ने परमेश्वर के वचन को चुग लिया और वो जड़ नहीं पकड़ पाया। इसके बाहर यदि आप कर्णप्रिय काल्पनिक व्याख्याएं करते हैं तो आप संकट की अवस्था में हैं। मैं परमेश्वर के वचन के विषय में कल्पना करना कदापि नहीं चाहता हूं। मैं तथ्यों का अवलोकन करके तथ्यों तक ही सीमित रहता हूं। जिन विषयों को मैं समझ नहीं पाता तो मैं स्पष्ट कह देता हूं कि मैं नहीं समझता। जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि दसवें दर्शन को मैं पूर्ण रूप से समझ नहीं पाता, क्योंकि परमेश्वर ने इन भिन्न भिन्न रंग के घोड़ों के विषय में अधिक जानकारी नहीं दी है। जकरिया अध्याय 6:1। मैंने फिर आंखें उठाई और क्या देखा कि दो पहाड़ों के बीच में से चार रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं। पीतल के पहाड़ अर्थात परमेश्वर का न्याय। जकरिया अध्याय 6:2-3। पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले, तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। ये घोड़े प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 के क्रम के अनुसार नहीं है। वहां सफेद घोड़ा है, उसके पीछे काला घोड़ा, तब लाल घोड़ा, तब पीला है। अतः दोनों जगह घोड़े भिन्न भिन्न है। जकरिया अध्याय 6:4। तब मैंने पूछा। जकरिया की समस्या भी वही थी जो मेरी है, वो भी समझ नहीं पाया था। जकरिया अध्याय 6:4-8। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश के चारों वायु है जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए हैं। जिस रथ में काले घोड़े हैं वो उत्तर देश की ओर जाता है और श्वेत घोड़े उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। और चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं, और बदामी घोड़ों ने निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करें। सो दूत ने कहा, जाकर पृथ्वी पर फेरा करो। उसने घोड़ों को आज्ञा दी, जाओ और सैर करो। तब वे पृथ्वी पर फेरा करने लगे। तब उसने मुझसे पुकार कर कहा, देख, वे जो उत्तर के देश की ओर जाते हैं, उन्होंने वहां मेरे प्राण को ठंडा किया है। इस दर्शन के विषय यही व्याख्या है, इससे अधिक मैं भी नहीं जानता। आप जैसे समझना चाहे समझिए। उचित तो यही होगा कि अधिक जानकारी पाने के लिए प्रतीक्षा करें। इसे अपनी फाइल में नथी कर ले और प्रतीक्षा करें। मेरी फाइल में धर्मशास्त्र के अनेक ऐसे भाग रखे हुए हैं। अग्रिम भाग के विषय मुझे पर्याप्त समझ है, क्योंकि ये दर्शन नहीं तथ्य है। जकरिया अध्याय 6 पद 9 से लेकर 13 तक। फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा। ये जकरिया है। बंदवाई के लोगों में से हेल्दे, तोबिया और यदाया से कुछ ले, और उसी दिन तू सपन्या के पुत्र योशिया के घर में जा, जिसमें वे बाबुल से आकर उतरे हैं। उनके हाथ से सोना चांदी ले और मुकुट बनाकर उन्हें यहोसादक के पुत्र यहोशू महायाजक के सिर पर रख, और उसे ये कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, वो अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा, वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा, और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा, और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा, और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। यहोवा ने जकरिया से कहा कि इन लोगों को अपने साथ ले जाकर सोना तथा चांदी का मुकुट बनाकर यहोशू का अभिषेक करके उसके सिर पर रख दे, और आने वाले राजा अर्थात शाखा के विषय भविष्यवाणी कर। यहां एक विचित्र बात देखने को मिलती है कि उन्होंने यहोशू के सिर पर ताज रखा। यहोशू लेवी वंशी था अर्थात पुजारी, परंतु इसराइल का राजसी गोत्र यहूदा था। धर्मशास्त्र में ये भविष्यवाणी भी है कि दाऊद के सिंहासन पर बैठने वाला यशै की एक शाखा होगा अर्थात यहूदा के राजसी वंश का होगा, परंतु यहां वो यहोशू याजक को, जो महायाजक का पुत्र था और लेवी वंश का था, उससे मुकुट पहना रहा है, और भविष्यवाणी शाखा के बारे में है। यहां ध्यान देने योग्य बात जो है वो है यहोशू नाम। यीशु नाम यूनानी अनुवाद है। यदि इब्रानी में देखें तो यहोशू का अर्थ या उद्धार है। इस प्रकार इब्रानी नाम हुआ यहोवा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहोशू अर्थात यीशु को मुकुट पहनाया गया। वो यहूदा के वंश से था, तो इस भविष्यवाणी के अनुसार यीशु महायाजक भी है और राजा भी है। इब्रानियों की पुस्तक का लेखक स्पष्ट करता है कि यीशु हमारा महायाजक है, जो हमारे लिए स्वर्ग में प्रवेश कर गया। अन्य जातियां जो यीशु में विश्वास ला चुकी है, उन्हें तो यीशु के महायाजक होने में कोई समस्या नहीं है, परंतु एक यहूदी को हमेशा समस्या रहेगी कि यीशु यहूदा के वंश से होकर याजक कैसे हो सकता है। यहूदा का वंशज तो कभी भी याजक नहीं हो सकता है। इस कारण इब्रानियों के लेखक ने कहा कि वो मलकीसदेक के वंश का याजक है, ना कि लेवी वंश का। जब इब्राहिम अपने भतीजे लूत को छुड़ाकर और उन पांचों राजाओं को पराजित कर लूट का सामान ला रहा था, तब सालेम का राजा मलकीसदेक उसे भेंट करने आया और इब्राहिम ने उसे अपनी लूट के सामान का दशमांश दिया। मलकीसदेक की पृष्ठभूमि के विषय हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। हमें केवल यही बताया गया है कि वो सालेम का राजा था और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का याजक था, तथा उसने इब्राहिम से दशमांश ग्रहण किया। कहने का अर्थ यह है कि लेवियों का पुरखा इब्राहिम ने उसे दशमांश दिया तथा उसे आशीष प्राप्त की, तो वो इब्राहिम से बड़ा हुआ, इस प्रकार वो लेवियों से भी बहुत बड़ा हुआ। यहूदियों के लिए इब्रानियों के लेखक का ये तर्क सिद्ध करता है कि यीशु का याजक पद लेवियों के याजक पद से बहुत ऊंचा है। यहां हम देखते हैं कि याजक को मुकुट पहनाया गया। एक दिन यीशु ये दोनों भूमिकाएं निभाएगा। आज यीशु दोनों भूमिकाएं पूर्ण कर रहा है, परंतु वो दिन भी आएगा कि प्रत्येक मनुष्य उसको राजा कहकर घुटने टेकेगा। यही शाख मंदिर का निर्माण भी करेगा। अति रूढ़िवादी यहूदी वर्तमान इसराइल राष्ट्र के पक्ष में नहीं है। उन्होंने जॉर्डन के राजा को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि उन्हें अर्थात मिया शरीम को जॉर्डन की नागरिकता दी जाए। उनके विचार में जब तक मसीहा आकर मंदिर का निर्माण नहीं करता, इसराइल राष्ट्र को अस्तित्ववान होने का अधिकार नहीं है। वे जकरिया की भविष्यवाणी के आधार पर मसीहा की पहचान के पक्ष में हैं कि वो मंदिर का निर्माण करेगा। ये लोग यीशु की भविष्यवाणी की पूर्ति कर रहे हैं। यूहन्ना अध्याय 5 पद 43, मैं अपने पिता के नाम में आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, यदि कोई और अपने ही नाम में आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। यीशु का संदर्भ क्रिस्त विरोधी के आने से था। दानियल अध्याय 7 में लिखा है कि रोमी साम्राज्य का राजकुमार अर्थात आज के यूरोप का राजकुमार आएगा और इसराइल के साथ वाचा बांधेगा, और 7 वर्ष पूरे होने से पहले ही वो वाचा तोड़ेगा और उस घृणित वस्तु को खड़ा करेगा जो उजाड़ करेगी। मेरे विचार में मंदिर अति शीघ्र बनने वाला है, क्योंकि मंदिर निर्माण के लिए यरूशलेम में बड़े जोर शोर से आंदोलन छिड़ा हुआ है। महाक्लेश के समय मंदिर खड़ा होगा। यूहन्ना को सरकंडा दिया गया कि वो उस विपत्ति के समय नवीन मंदिर और उसके परिसर की पैमाइश करे। जकरिया की भविष्यवाणी के अनुसार ये शाखा मंदिर का निर्माण करेगी और महिमा के साथ सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगी। कहने का अर्थ ये है कि वे मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे हैं। किसी अति रूढ़िवादी यहूदी से पूछिए तो वो यही कहेगा कि मसीहा अति शीघ्र आने वाला है और वे इसे मंदिर निर्माण के द्वारा ही पहचानेंगे। वे क्रिस्त विरोधी को स्वीकार करने के लिए तत्पर है। वो आएगा, चट्टान पर बने मस्जिद और मंदिर के अंदर की उत्तरी दिशा में मध्य दीवार खड़ी करेगा तथा मंदिर बनाने में यहूदियों की सहायता करेगा। वे तुरंत उसे मसीहा बनाकर सिंहासन पर बैठा देंगे। 3.5 वर्ष पश्चात वो पुनः आएगा और अपने निंदा के काम द्वारा अपनी सच्ची पहचान देगा। वो परमेश्वर के मंदिर में खड़ा होगा और अपने आप को परमेश्वर कहेगा तथा दैनिक बलिदान और आराधना को बंद करवाकर अपनी उपासना की आज्ञा देगा। इस पशु की और उसकी प्रतिमा की उपासना नहीं करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये जकरिया की भविष्यवाणी पर आधारित अवश्य है, परंतु जकरिया उस मंदिर के विषय कह रहा है जो परमेश्वर के राज्य के युग का मंदिर होगा, जिसका वर्णन एहेस्केल में दिया गया है कि प्रभु स्वयं उसे बनाएगा। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा, और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच मेल की सम्मति रहेगी। जकरिया अध्याय 6:14। और वे मुकुट हेलेम, तोबिया, यदया, सपन्या के पुत्र होने को मिले, और वे यहोवा के मंदिर में स्मरण के लिए बने रहे। वे मुकुट बनाकर यहोशू को पहनाए, तब उसे मंदिर में रखे कि वे उन लोगों को भावी महिमा का स्मरण कराते रहे कि एक दिन वास्तविक राजा आकर राज करेगा। ये उनकी आशा होगी। वे जब मंदिर में जाएंगे तब तब ये मुकुट उन्हें इसराइल में आने वाली महिमा का स्मरण कराएंगे, यहोशू अर्थात यीशु का राज्याभिषेक। जकरिया अध्याय 6:15। फिर दूर दूर के लोग आ आकर यहोवा के मंदिर बनाने में सहायता करेंगे। मैं इन कर्मियों में से एक अवश्य होना चाहूंगा। जकरिया अध्याय 6:15 में आगे लिखा है, और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो तो ये बात पूरी होगी। ये उस महिमामय दिवस का वर्णन है जब यीशु पृथ्वी पर राज्य करेगा। उस समय उसका और उसके राज्य का आज्ञा पालन होगा।